मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 24 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूंगा। और सजेशन ये है, यदि आप कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम देख रहे हों, तो कुछ दिनों पहले एक महिला आई थी जिनका नाम है मोहिता शर्मा। ये IPS ऑफिसर है, 2017 बैच की IPS ऑफिसर है। चूंकि आप जो बनने जा रहे हैं उसी से ही संबंधित हो रही है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपसे इसके बारे में कुछ बातें करनी चाहिए। वो जो एपिसोड है, वो एपिसोड आप जरूर देखें, आपको देखना ही चाहिए। उसकी जो सबसे खूबसूरत बात है, ये खुद उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते, 1 करोड़ रुपए दूसरे लोगों ने भी जीते हैं, है ना, आगे भी लोग जीतेंगे। लेकिन इस एपिसोड की जो सबसे खूबसूरत बात है, जिसकी वजह से भी मैं आपको यह सजेस्ट कर रहा हूं, केवल इसी वजह से नहीं कि एक IPS ऑफिसर ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो अद्भुत है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस एपिसोड को देखने के बाद आपके अंदर 2 बातें आएंगी, और दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। पहली बात तो यह कि जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से सही विकल्प तक पहुंचा कैसे जाता है। वो बकायदे बात करती हैं, अपने से करती हैं, डिस्कशन करती हैं, अच्छा ये नहीं होगा, अच्छा ये तो इसलिए नहीं हो सकता, अच्छा ये अगर हो सकता है तो फिर कैसे हो सकता है। बकायदे उन्होंने खुद से बातें की हैं, वो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे। दूसरी बात कि चलिए, जब हम 3 विकल्पों को हटाते हैं और 1 विकल्प को स्वीकार करते हैं, तो ऐसा हम कर कैसे पाते हैं। मतलब आप खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात सही तो होनी चाहिए। अगर खुद से की जाने वाली बात गलत हो गई तो सीधी सी बात है कि बात बिगड़ जाएगी। तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो विकल्प तक पहुंचने की स्थिति आती है, यानी कि सही सही अनुमान लगाने की जो हमारी क्षमता विकसित होती है, वो कैसे होती है। कब का कहां का क्या पढ़ा हुआ, कब का कहां का क्या सुना हुआ यहां काम आता है। और यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, केवल प्री के बारे में ही नहीं बल्कि मेंस के बारे में भी। तो दोस्तों, आप ये सब एपिसोड जरूर देखें। अब यहां मैं जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं, उन्हें यह बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, जो लेक्चर्स आप सुन रहे हैं उनकी पूरी की पूरी बनावट इसी पैटर्न पर है। उसमें इतनी सारी चीजें बता करके उदाहरण के जरिए आपको सही तथ्य तक पहुंचाने की कोशिश की गई है कि जो सच है वो आपके दिमाग में रच बस जाए। और इस प्रोसेस में आपको और भी दूसरी इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपकी जो क्षमता है वो बहुत मजबूत हो सके। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, जब आप लेक्चर सुने तो आप इसी तरीके से सुने मानो कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं और ध्यान मग्न होकर के किसी की बात को सुन रहे हैं। तभी सही मायने में आप इन लेक्चर्स का सही सही फायदा उठा सकेंगे, और उससे भी बड़ी बात कि आप इसका लुत्फ भी उठा सकेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के रूप में मैं आज आप सबसे कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस, इस विषय पर बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले 1-2 घटनाओं को देख लेते हैं। मैं आज आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, पीपल फर्स्ट करके। आप लोगों ने अखबारों में शायद पढ़ा हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है, और निर्णय यह है कि गो सेवा के लिए वो उपकर लगाने जा रही है। मतलब काउस के लिए, गायों की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए उपकर लगाएगी। यानी उपकर क्या होता है आप जानते हैं। अब देखिए कि यह एक प्रश्न है, मान लीजिए एक सवाल आपके सामने आया है कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा निर्णय लेने जा रही है, या निर्णय उसने ले लिया है। आपने बस केवल इतनी खबर पढ़ी है अखबार में या न्यूज में, आपने सुन लिया, और आपसे ये प्रश्न मेंस में पूछा गया कि आप इससे कहां तक सहमत हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न, और आपको के लिए मैंने बताया कि आपने केवल थोड़ा सा सुना है या थोड़ा सा पढ़ लिया है, आप इसके बारे में डिटेल्स में कुछ नहीं जानते। तो मेरा प्रश्न यहां यह है कि क्या आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप इसके बारे में कुछ बता सकें, कुछ लिख कर आ सकें। लेकिन जो कुछ बताएंगे और जो कुछ लिख कर आएंगे वो ऐसा होना चाहिए कि अगर यह 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कम से कम 4 नंबर तो हासिल कर ही सकें। देखिए, मान करके चलिए कि जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर हैं उसमें शुरू के जो 3 पेपर हैं उसमें किसी में भी आपके 100 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपको थोड़ी भी ठीक ठाक रैंकिंग हासिल करनी है तो 100 मार्क्स इसका मतलब है 40%, तो आपको 4 मार्क्स इसमें लाने ही हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसके बारे में आपने कुछ ज्यादा सुना नहीं है, आपने इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तब आपका जो स्कोर होना चाहिए इसी क्वेश्चन में मोर देन 5 मार्क्स, इन बिटवीन 5 to 6 मार्क्स। मैं मध्य प्रदेश की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो खबर है स्वाभाविक है कि चूंकि मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है तो मध्य प्रदेश के अखबारों में विशेष रूप से प्रकाशित हुई है, उसके बारे में चर्चा भी हुई है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि इससे कोई किसी दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब आपके सामने 2 मॉडल हैं, एक मॉडल है 4 अंक हासिल करने का और दूसरा मॉडल है 6 अंक तक पहुंच जाने का, और तीसरा मॉडल तो है ही है कि आप आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर प्राप्त कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि जब हम इस मॉडल को लेकर के चलते हैं तो ये मान करके चल रहे हैं कि हम अगली दौड़ में नहीं शामिल हो पाएंगे, यानी कि इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। मैं आपको एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आप पढ़ेंगे तो अपना मूल्यांकन कीजिए। इस एडिटोरियल कमेंट का उपयोग आप अपना मूल्यांकन करने के लिए कीजिए कि मैंने ये पॉइंट सोचा था कि मैं ये लिखूंगा, और मैं देखता हूं कि इस एडिटोरियल कमेंट्स में किस तरीके से अपनी बातें रखी गई हैं। संभव हुआ तो मैं इस पर कल आप लोगों से बात करूंगा, संभव हुआ तो, राइट? तो आप लोग ये काम प्लीज जरूर करें। एक छोटी सी खबर है अखबारों में और वो ये है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति, एक छोटा सा आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि जो दुनिया भर में जो गाड़ियां हैं उसका केवल 1% गाड़ियां ही उसकी केवल भारत में है, जबकि सड़क हादसे जो हमारे यहां होते हैं वो 11% होते हैं। गाड़ियां 1% हैं और सड़क हादसे 11% होते हैं। बस आप एक छोटा सा रेफरेंस के रूप में आप इसे जान लें। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय है कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस। रिजर्व बैंक की एक कमेटी है जो इनकी आंतरिक कार्यशील समूह जिसे हम कहते हैं IWG, इंटरनल वर्किंग ग्रुप, उसने एक सिफारिश की है, और अपने सिफारिश के तहत उसने ये बात कही है कि जो कॉरपोरेट घराने हैं, कॉरपोरेट घराने जब हम कहते हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको बैंक का लाइसेंस दिया जाए, यानी कि वे बाकायदे अपने बैंक खोल सकें। मैं सामान्य रूप में समझा रहा हूं आपको, है ना, जब आप अखबारों में पढ़ेंगे तो आपको विशेष रूप से समझने का अवसर मिल जाएगा। वो बैंक खोल सकें या बैंकों में जो उनकी भागीदारी है उस भागीदारी को बढ़ा सकें। तो देखिए, होता यह है कि जब वो अपना बैंक खोल लेंगे तो पूरी तरह से वो मालिक होंगे ही होंगे। अगर वो दूसरे बैंकों में अपनी इक्विटी बढ़ा देंगे तो उन बैंकों पर उनकी पकड़ अधिक हो जाएगी। ये बात रिकमेंडेशन में कही गई है, ठीक है? अब हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इससे दरअसल होगा क्या। इसके बारे में भी आप अपने दिमाग में थोड़ी सी बातें लेकर के आइए। इस बीच में आप देखिए कि बैंकों में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप वाकिफ हैं। आप देख रहे हैं यस बैंक के साथ क्या हुआ, दिवालिया निकलने की स्थिति आ गई, उस पर सरकार ने नियंत्रण किया, बाद में फिर उसको बचाने की कोशिश की गई और उसको बचा भी लिया गया। सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों ने उसे संभाला। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के साथ भी यही हुआ। IDBI बैंक को क्या हुआ कि उनके पेरेंटिंग कंपनियों के साथ मर्ज किया गया। ये प्राइवेट कंपनीज की मैं बात बता रहा हूं कि किस तरीके से इन सब ने एक समय पर जाकर के लॉसेस दिखाने शुरू किए और उससे ग्राहकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, और फिर किस तरीके से इन बैंकों को संभालने की कोशिश की गई। ये एक पक्ष है जो बैंकों से जुड़ा हुआ है। इसका दूसरा पक्ष है, आप विजय माल्या जी का नाम सुनते हैं बकायदे, आप जो हीरा हीरा के कारोबारी मिस्टर मोदी रहे हैं उनका नाम सुनते हैं कि किस तरीके से वो इंग्लैंड चले गए हैं और उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है, और भी इस तरह के जो कारपोरेट घरानों ने जो कर्ज लिए हुए हैं लेकिन वो वापस नहीं दे पा रहे हैं, उन पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आप लगातार सुनते रहते हैं। और बकायदे हमारे पास डेटा है और डेटा में ये बताया गया है कि मार्च 2020 तक कारपोरेट घरानों ने जो कुल लोन लिया हुआ है उसका लगभग 13% एनपीए था। एनपीए का मतलब है कि उस लोन का भुगतान नहीं होगा। देखिए, वैसे आपको 13% थोड़ा सा भले ही कम लग रहा हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा राशि के जो लोन लेते हैं, ये लोन लेते हैं तो कोई लाख दो लाख या करोड़ दो करोड़ के लोन नहीं लेते, बहुत बड़े बड़े लोन लेते हैं। तो अब उसका सोच करके देखिए, टोटल एनपीए का 13% कारपोरेट घराने के पास है, यानी कि 50% जो लोन वापस नहीं आएगा वो कारपोरेट घराने हैं जो नहीं लेते। एक कभी वेब सीरीज आई है 1992 स्कैम करके, जो हर्षद मेहता पर बनी हुई है। अगर आपने वो वेब सीरीज देखी हो तो बेसिकली उस समय जो शेयर मार्केट में जो घोटाला हुआ था, जो संकट पैदा हुआ था, और उसके बाद ही फिर सेबी वगैरह अस्तित्व में आई है, उसके पीछे कारण क्या था? जो मेन कारण था वो ये था कि हर्षद मेहता ने बैंकों से लोन लेना शुरू किया, पैसे लेना शुरू किया, और बैंकों ने उसे जम करके पैसा दिया। अब आप देखिए कि यहां आपके सामने अब एक दो चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, मैं आपको अलग तरीके से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब जो बैंक हैं वो लोन देते हैं, ठीक है, और जो कारपोरेट घराने हैं वो लोन लेते हैं। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए कि ये जो बैंक है ये कारपोरेट घरानों के ही बैंक हैं, ये उनके खुद के बैंक हैं और वो खुद लोन ले रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, यार ठीक है उनका अपना बैंक है, वहां से उन्होंने लोन लिया, तो अब ना दें तो उनका अपना बैंक तो डूबेगा, उसे दूसरों को क्या हर्ज है। यहां आप थोड़ी सी चूक कर रहे हैं, बस उसको मैं दुरुस्त कर दूं कि जब आप एक बैंक खोलते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 1,000 करोड़ रुपए है, आपने 1,000 करोड़ रुपए का बैंक खोल दिया है उतने धन से, लेकिन बकायदे आपके इस बैंक में पब्लिक का पैसा आता है, पब्लिक का पैसा आ रहा है, आप अपने बैंक के फिर शेयर्स निकालते हैं, उस शेयर्स को पब्लिक खरीदती है, तो पब्लिक आपके बैंक के स्वामित्व में साझेदारी भी करती है और पब्लिक का पैसा आपके यहां जमा है, और पता लगा कि पब्लिक का पैसा जमा है और आपका बैंक फेल हो गया है, अब आप क्या करेंगे? तो आपको अब शायद थोड़ी सी झलक मिली होगी कि जो कारपोरेट घराने हैं अगर उनको ही बैंकों का लाइसेंस दे दिया गया तो क्या स्थिति हो सकती है। दरअसल ये अभी डिबेट का विषय बन चुका है, और आप जानते हैं कि हमारे जो पहले के गवर्नर आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन जी, और जो डिप्टी गवर्नर रहे हैं विरल आचार्य, उन्होंने इस रिकमेंडेशन के प्रति बहुत ही गहरी आशंकाएं जाहिर की हैं, बकायदे अखबारों में सोशल मीडिया पर उन्होंने आर्टिकल लिखा भी है। तो आपको अगर ये पढ़ने को मिलता है तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से एक मित्र हैं सूर्य प्रताप सिंह। इन्होंने सूचित किया है कि इन्होंने यूपीपीएससी का प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, और इसके लिए उन्होंने एफआईएस के प्रति आभार व्यक्त किया है। तो सूर्य प्रताप सिंह जी, मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आपकी सफलता के लिए आपको बधाई देता हूँ, और आप आगे भी इस बहुत बेहतर सफलताएं हासिल करें इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। अन्य मित्रों के नाम हैं निधि मीना, पूजा गुप्ता और मनीषा सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।